बोली कृष्ण चंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, सब संतों की जय। परमात्मा और गुरुजनों की कृपा से कठोपनिषद में हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रथम अध्याय में जमराज जी सरल उपाय से आत्मा का निरूपण किया और बोल दिया कि सभी शरीर में वो परमात्मा छुप गया है। ऐसा सर्वभूतेषु गुणः, आत्मा न प्रकाशते। फिर उसका दर्शन कैसे होगा तो बता दिया, दृश्यते तग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, बुद्धि एकाग्र होनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि हम लोगों को नहीं मिल रही है। इसे न मिलने का कारण क्या है इसका पहले पता लगाना चाहिए। इसलिए प्रतिबंधक को पता लगाने के लिए द्वितीय अध्याय को प्रारंभ किया जमराज जी ने। तो प्रथम मंत्र में बताया कि सबसे पहले धीर बनना पड़ेगा और सबको देखते जाओ, अनुकूल को भी देखो, प्रतिकूल को भी देखो व्यवहार करते समय। इसलिए धीर बनना होगा। जब साधन अवस्था में बैठेंगे तो वहां पर इंद्रियों का निग्रह करना होगा, इसलिए बता दिया आवृत चक्षु। चक्षु मतलब केवल आंख नहीं है, सभी इंद्रियों को लेना है। लेकिन ये चक्षु जो बाहर के फोटो को खींच करके रखा है, रील बनाकर रखा है अंतकरण में, तो इंद्रियां बाहर ना जाने पर भी ये मन तो जो है फोटो को वो देखता रहेगा। ये भजन करने के लिए बैठेंगे, मनोराज्य करेगा तात्पर्य। तो समझना चाहिए कि इंद्रियों को समझना पर भी यदि मनोराज्य हो रहा है, परमात्मा में मन नहीं लग रहा है भजन में, तो समझ लो कि अभी संसार की इच्छा कुछ बाकी है। संसार से कुछ हम रस लेना चाहते हैं, इसलिए तुम संसार का परीक्षण कर लो तो ये निश्चय हो जाएगा कि संसार में वास्तविक आनंद तो नहीं मिल सकता है। इसलिए तुम अमृतत्व की इच्छा को बढ़ाओ। ये बता दिया तीसरा साधन, अमृतत्वम इच्छन। तुम जब अमृतत्व की इच्छा तीव्र करोगे तो मन में मनोराज्य नहीं होगा और सुसुप्ति निद्रा में भी मन नहीं जाएगा। तो ये तीन साधन को जो तुम अपनाओगे तब तो प्रत्येक आत्मा को जानने के लिए योग्य बन जाओगे। ये बात बता दिया, प्रत्येक आत्मा नाम इच्छत, प्रत्येक आत्मा का दर्शन करता है। यहां पर एक्षत शब्द का प्रयोग किया है श्रुति ने, लंग लकार का प्रयोग किया है। तो वेद जो है हमारा अनादि है, इसलिए शास्त्र कोई अनादि है तो वेद ही अनादि है। इसलिए भगवान भाष्यकार लिखते हैं छंदस्य कालस्य अनियमात्। वेद में काल का कोई नियम नहीं होता है, प्रभा रूप से चलता रहता है, प्रभा रूप से। इसलिए वेद का लोप कभी भी नहीं होता है, प्रलय होने पर भी वेद का लोप नहीं होता है। तो ये जो पढ़ रहे हैं ना, ये वेद को हम नहीं पढ़ रहे हैं, वेद की लिपि को पढ़ते हैं। ये क्या है, ये लिपि है, ग्रंथ में लिपि होती है, शब्द नहीं होता है। तो ग्रंथ समाप्त हो गया, अभी जो है कुल मिलाकर के 1180 शाखा है ना, जितनी शाखा है उतनी उपनिषद है, लेकिन मिलती तो नहीं है आजकल, तो उपनिषद का क्या लोप हो गया, लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन महापुरुष लोग जो होते हैं ईश्वर की उपासना करके प्रातिभ ज्ञान से उस वेद को, वेद का साक्षात्कार करते हैं। इसलिए ऐसे साक्षात्कार करने वालों को ऋषि कहा गया, ऋषयः मंत्र द्रष्टार। आजकल तो किसी की भी उपाधि दे देते हैं, ऋषि है ये, ऋषि ऐसे लोगों को नहीं बोलते हैं जिसने मंत्र का साक्षात्कार किया है, जिसके शुद्ध चित्त में मंत्र अभिव्यक्त हो गया, जैसे याज्ञवल्क्य हो गए, कट ऋषि हो गए, ये कट ऋषि है, उनकी उपनिषद है। इसलिए हमारे भगवान भाष्यकार लिखते हैं, और एक बात भी हम बताना चाहते हैं, यदि भगवान भाष्यकार का अवतार न होता, भगवान शंकर ने यदि शंकराचार्य का अवतार न लिया होता, तो उपनिषद का वास्तविक जो तात्पर्य है, भगवद गीता है, ब्रह्मसूत्र है, इसका जो वास्तविक तात्पर्य है, उसका तात्पर्यात्मक ज्ञान हमको नहीं प्राप्त हो पाता, इसलिए हम उसके सब ऋणी हैं। लेकिन ऐसे महापुरुष को लोग भूल जाते हैं, जिनकी कृपा से हम बैठ करके आप लोगों को सुना पा रहे हैं, तो किसकी कृपा है, भगवान भाष्यकार की, भगवान शंकराचार्य की कृपा है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि ऐसे महापुरुष को लोग भूल जाते हैं। तो इसलिए जागा जागा पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं, अरे शब्द कैसा भी हो इसका अर्थ तो ऐसा ही होगा, अयमेव अर्थ, इस शब्द का अर्थ तो ऐसा ही होगा, ये जागा जागा पर भगवान भाष्यकार लिखते हैं। इसलिए यहां पर भी लिखा है कि एक्षत का अर्थ दर्शन करता है, लंग लकार का प्रयोग भूत काल में होता है, तो पहले किसी ने प्रत्येकात्मा का साक्षात्कार किया था और अभी कोई नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं, जो ज्ञान का अधिकारी है उसको ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान में कोई भेद नहीं होता है, ज्ञान का अधिकारी कोई भी बन सकता है, जैसे कर्म का अधिकारी सब नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के अधिकारी सब बनते हैं। तो ब्राह्मण भी होता है, वैश्य भी होता है, शूद्र भी हो सकता है। इसी प्रकार से ज्ञान का अधिकारी ब्राह्मण भी होगा, शूद्र भी होगा, पुरुष भी होगा, स्त्री भी होगी, इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है। इसी बात को यहां पर तो कहा, कश्चित धीर, कोई भी धीर हो सकता है, कोई भी ज्ञान का अधिकारी हो सकता है। तो किसका अधिकारी हो जाएगा, बोल दिया प्रत्येक आत्मानम, आत्मा को जानने का अधिकारी बन जाएगा वो। तो जब प्रकरण चल रहा है आत्मा का, तो हम लोग आत्मा आत्मा तो बोलते हैं, लेकिन आत्मा शब्द का अर्थ क्या है इसकी एक और भगवान भाष्यकार ने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। कल आप लोगों को बता दिया था यद चापनोति यद आदत्ते यच्चाति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस् तस्मात् आत्मेति कीर्तते। पहला अर्थ बताते जो सबको व्याप्त करे उसका नाम हो गया आत्मा, आप व्याप्त सर्वान आपनोति व्याप्नोति इति आत्मा, जो सबको व्याप्त कर लेता है। उस परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया और स्थिति काल में वही परमात्मा सबको व्याप्त करके रखा है। जैसे मिट्टी ने घड़े को उत्पन्न कर दिया भाई, और स्थिति काल में सभी घटादि पात्रों में एक मिट्टी व्याप्त होकर रहेगी, तो सृष्टि करने वाला भी वही हो गया और व्याप्त करके रखने वाला स्थिति काल में भी वही हो गया। इसलिए जो सबको व्याप्त करे उसका नाम होता है आत्मा, एक अर्थ हो गया। देखो और जो है जब प्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाता है तो अपने में समझ लेता हो ये यत प्रयंति अभिषम विषंति, अपने में सब लय कर देता है परमात्मा। इसलिए दूसरा अर्थ हो गया आदत्ते इति आत्मा। आदत्य का अर्थ लिखते हैं संघरति, अपने में जो संघार कर लेता है उसका नाम हो गया आत्मा। देखो जिसने उत्पन्न किया और स्थिति काल में वही सबको व्याप्त करके रखा और लय काल में अपने में लय कर देता है, इसलिए दूसरा अर्थ हो गया आदत्तेति आत्मा, संघार करने वाला आत्मा हो गया, है ना। जैसे कि समझ लो आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में देखा कि कोई भी कुम्हार जो है मिट्टी का ढेर बनाकर रखा है घड़ा बनाने के लिए रखा हो, तो सुबह तो आप गए उस रास्ते में, आते समय देखा कि वो नहीं दिख रही है मिट्टी, तो पूछा कि भाई वो कहाँ गई। आपने पूछा कुम्हार से वो कहाँ गई, क्या कहाँ गई, जो मिट्टी का जो ढेला था ना यहाँ पर गई कहाँ, तो उसने कहा कहीं गई नहीं, यही है सामने, मिट्टी से घड़ा बन गया, सकोरे बन गए, पुरवा बन गए, बहुत से कुछ बन गए, तो उसने कहा कि वो कहीं गई नहीं, यही है। बड़ी विलक्षण बात हो गई। और क्या हुआ कि रात में ऐसी बारिश हुई, ऐसी बारिश हुई, सब समाप्त हो गए। फिर जो है सुबह जाकर देखा तो नहीं दिख रही है, तो पूछा कहाँ गया वो सब, वो कहीं गए नहीं, इसी में सब समा गए, मिट्टी में ही सब समा गए। देखो पहले मिट्टी थी, है ना, अब क्या हो गया कि सब घड़ा वगैरह सब बन गए, है ना, तो जब बन गए उसमें भी मिट्टी है ना, और जब बारिश हुई तो लय हो गया तो कहाँ पर लय हो गई, मिट्टी में लय हो गई, है ना। तो सृष्टि से पहले जो है और वही सृष्टि के बाद भी रहती है, और लय होने पर भी वही रहती है, है कि नहीं। इसलिए कौन सत्य हो गया, जो हमेशा रहे वो होता है सत्य, इसलिए मृत्तिका इत्येव सत्यम वाचारम्भम विकारो नामोदयम्। जो पहले नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा और स्थिति काल में थोड़ा सा दिखे उसको कहते हैं क्या, मिथ्या, है कि नहीं। आप लोग सुनते ना मांडी के कार्यक्रम में आदावंते यन्नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा, ये गुरुपाद भगवान ने मांडू का कारिका लिखी है मांडू के उपनिषद के ऊपर, जैसे आप लोग सुन रहे हो ना जोग वशिष्ठ है ना, ये जोग वशिष्ठ का जो कथा है ना, तो ये किसका व्याख्यान जानते हैं? महापुरुष लोग बोलते हैं ये मांडिक्य कारिका उपनिषद का ये व्याख्यान है, वो उसका ये भाष्य है। इसलिए मांडिक्य उपनिषद में भी अजाद बात है, ओके कि नहीं? आप लोग जोग वशिष्ठ सुन रहे हो इसमें भी अजाद बात है। तो वो समझ लो मंत्र है और ये समझ लो क्या है, ब्राह्मण भाग है। तो संक्षिप्त रूप से विचार है, उसका विस्तृत रूप से यहाँ पर सरल ढंग से कहानी के रूप से विस्तार है। जैसे ईशावास्य हो गया मंत्र, और बृहदारण्यक उपनिषद हो गई उसका विस्तार, ब्राह्मण भाग। ठीक इसी प्रकार मांडलिक कारिका क्या है, मंत्र, और आपके योग वशिष्ठ जो कथा है ना उसका विस्तार, ब्राह्मण भाग। ऐसा महापुरुषों का कहना है। इसलिए जो पहले हो और अभी भी हो और आगे भी रहे वो होता है सत्य, और जो पहले ना हो आगे ना हो और वर्तमान में कुछ दिखे उसका वास्तविक अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन आत्मा का ऐसा नहीं है, वो पहले भी है अभी भी है और आगे भी रहेगा। आत्मा रहेगा मतलब हम रहेंगे, हम रहेंगे। तीसरा एक अर्थ बताते हैं, भाई जिसने बनाया है ना उसको देखने वाला सुनने वाला कौन होगा, वही होगा। जागृत में तो ये बात समझ में नहीं आती है, इसलिए स्वप्न दृष्टांत लेना पड़ता है। स्वप्न का संसार को बनाया किसने, हमने बनाया, बनाया किसने? भाई वहां पर लड्डू बनाते हो, कहीं से आटा वगैरह लाते हो क्या? नहीं लाते हो, कहीं से खोआ तो लाते नहीं है, तो कहां से लाया, कहीं से लाया नहीं, तो आप ही बना दिया। और खाया किसने? देखने वाला, खाने वाला, रस लेने, रस भी मिलता है ना? तो स्वप्न में भूख लगती है तो स्वप्न भूख की निवृत्ति भी हो जाती है, भले ही जागृत भूख की निवृत्ति ना हो, स्वप्न भूख की निवृत्ति तो होती है ना? किसी को डंडा मारेंगे तो सिर फूटेगा कि नहीं? कौन सा सर? स्वप्न का सर तो फूटता है, जागृत का भले ही ना फूटे, है ना? तो जिसने बनाया, जिसने बनाया उसको देखने वाला, खाने वाला, सुनने वाला भी वही है, दूसरा कोई होता नहीं है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर एक तीसरा अर्थ करते हैं आत्मा शब्द के, यच्च अति विषयान यह, कि जो विषय है ना रूप आदि को, इसको भी भोग करने वाला वही है, दूसरा कोई नहीं है। इसलिए तीसरा अर्थ यहाँ पर बता, अति इति आत्मा अदभक्षण, खाने पीने वाला, सुनने वाला, वो भी आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं होता है। अच्छा, और जिसने बनाया वही सबका अधिष्ठान होता है ना? स्वप्न को आपने बनाया तो बनाने वाला ही अधिष्ठान होता है, इसलिए स्वप्न दृष्टा जो है ना वही अधिष्ठान है, जो सबको सत्ता देवे है ना, और अपनी सत्ता से सत्तावान हो, उसको कहते हैं अधिष्ठान। जैसे पर्दा हो गया अधिष्ठान, और चित्र हो गए कल्पित, है ना? तो सभी चित्रों में जैसे पर्दे की ही सत्ता रहती है, हो गया कि नहीं? सभी तरंगों में जैसे जल की ही सत्ता रहती है ना? प्राण अपान ब्यान उदान समान, ये पंच प्राण उप प्राण में ले लो नागकुर्म आदि, तो पंच प्राण पंच उप प्राण में कौन सत्य है भाई अधिष्ठान? वायु ही सत्य है, हो गए कि नहीं? तो रूपाकार असाकार वृत्ति जो अंतकरण की हो रही है तो वहां पर सत्ता किसकी है? मन की होती है, मन से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर समष्टि में समझना है, जितने भी दिख रहे हैं, चाहे जागृत का हो चाहे स्वप्न का हो, हाँ, ये सब के सब क्या है, चित्र है। अब पर्दा कौन होगा, आत्मा ही पर्दा है। ओके, इसलिए पर्दा एक ही होते हैं और आत्मा ही पर्दा होता है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने एक आत्मा शब्द का चौथा अर्थ लिखा है श्लोक में, यच्चास्य संततो भावस, जिसकी सत्ता सर्वत्र हो, है ना, और जिसकी सत्ता कभी व्यभिचरित ना हो, तो हटे ना, उसको कहा जाएगा पारमार्थिक सत्य। इसलिए आत्मा की सत्ता जो है पारमार्थिक सत्ता है ना। तो ये आत्मा ने क्या किया कि तो अपने व्यवहार के लिए, आत्मा बड़ा समर्थ होता है, आत्मा बड़ा समर्थ होता है तो व्यवहार के लिए क्या क्या तीन कमरे जो है ना बना कर रखा है, तीन कमरे बना कर रखा। एक हो गया भी जागृत, ये कमरा हो गया, तो यहाँ पर रह करके जो है व्यवहार करता है, हाँ, व्यवहार करता है, लोगों से मिलता जुलता है। दूसरा एक जो है ना अंतरंग कमरा बना रखा है, अंतरंग कमरा कौन हो गया, वो सकता, वो अंतरंग कमरे में सबसे नहीं मिलता है। हाँ, जो व्यवहार जो किया है ना जागृत में, जो इंद्रियों से जो फोटो खींच कर रखा है, है ना, तो उसका जो अंतरंग कमरे में बैठ करके मिलाता रहता है, हिसाब किताब करता है, तो वो हो गया जो है सपनों का शरीर, हो गया सपनावस्था समझ लो। तो वहां पर करते करते वहां पर भी थक जाता है, थक जाता है तो सुसुप्त में चला जाता है, है ना, तो आराम से वहां पर गाढ़ नींद में सो जाता, फिर उड़ जाता है जागृत में, संसार में आ जाता है, है ना। तो ये विचार करना है कि तीनों कमर से आत्मा जो है अलग है, और आत्मा यदि अलग न होता तो बारी बारी से कैसे जाएगा भाई, एक कमरे से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चला जाता, फिर तीसरे से फिर एक प्रथम कमरे में आ जाता है। इसलिए आत्मा जो है भले ही व्यवहार करके, है ना, जागृत को मैं करके मान लेता है, इस माया तो जो है मनुष्य हो गया, पुरुष हो गया, स्त्री हो गई, है ना, तो सपनों में गया तो इसको भूल गया, सपनों में गया तो इसको भूल, तो जागृत में सो करके सपनों को देखता है, हो गए कि नहीं। तो जहां पर सो करके सपनों को देखता है उसमें यदि उड़ जाएगा तो सपना चला जाएगा, नहीं जाएगा, और लेकिन तो जहां पर सो करके जागृत को देख रहा है अभी भी क्या है, अभी भी सपना है। ये आप लोग योग बसीठ सुन रहे हैं ना, तो वहां पर बसीठ जी बोलेंगे ये भी सपना है, लेकिन सपना जो है छोटा सपना है और जागृत का सपना जो है बड़ा सपना है, है ना। तो भगवान राम को बताएंगे कि दीर्घ सपनम इदम सर्वम, है ना, दीर्घम वा चित्त विभ्रगम, दीर्घम वा मनोराज्यम विद्येनम रघुनंदन। इसलिए हे राम जी, ये जागृत कवि तुम क्या समझ लो, बहुत बड़ा सपना समझ, तो ये देख लो। तो जिस जागृत में सो करके हम सपनों को देखते हैं, उस जागृत में उड़ जाएंगे तो सपना चला जाएगा, हो गए कि नहीं। लेकिन जिसमें सो करके अब जागृत सपनों को देख रहे हो, उसमें जग जाएंगे तो जागृत चला जाएगा, हो गए कि नहीं, है ना। इसलिए सोना कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के हुए, तीन प्रकार के समझ लो, है ना। तो खा पी करके सो जाते हैं, सपना देखते हैं, वो भी हो गया एक सोना हो गया, है ना। तो सपनों को छोड़ करके गाढ़ नींद में चले जाते हो तो वो भी एक हो गया सोना, लेकिन अभी भी सो करके हम जागृत को देख रहे हैं, मतलब स्वरूप से सोए हैं ना अभी भी, तो कितने सोना हो गए, तीन हो गए कि नहीं हो गए, है ना। और सपना कितने हो गए, दो। इसलिए उसको कहते हैं सपना सपना, सपना का सपनों क्या बोलेंगे, सपना सपना, और इसको जागृत सपना बोलते हैं, ऐसा है। तो देखो, चाहे सपना सपना हो चाहे जागृत सपना हो, सभी सपनों में तो आत्मा रहता है, ये आत्मा ऐसा है, इसलिए इस आत्मा को समझ करके आगे बढ़े। तो प्रथम मंत्र जो है बहुत ध्यान देने का है, प्रतिबंधक को बता दिया। तो धीर बनना होगा, व्यवहार करते समय, खाते समय, पीते समय, सबको आप देखते रहो, संबंध नहीं बनाना है किसी के साथ। संबंध बनाओगे तो नीचे उतर जाओगे, संबंध बना करके यदि व्यवहार करोगे तो आप चाहो या ना चाहो राग द्वेष तो आएगा ही आएगा। इसलिए अनुकूल आया उसको भी देख लो, तो प्रतिकूल आया उसको भी देख लो, आप देखने वाले ही रहेंगे, हो गए कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को सुना रहा हूं तो मेरा कर्तव्य है सुनाना, बस, हो गए कि नहीं। इसलिए मेरा कर्तव्य सबको देखना है, लेकिन मैं यदि शरीर में अभिमान करूं, मेरी स्थिति, मैं यदि शरीर में अभिमान करके मैं यदि अपने आप को विद्वान मानूं अथवा मैं अपने आप को कथाकार मानूं, समझ लो कि मैं स्वरूप से नीचे आ गया। तो स्वरूप से यदि मैं नीचे आ गया तो हमको क्या दिखाई देगा, जो मेरी बात को बढ़िया सुन रहा है, हाँ ये बहुत बढ़िया सुन रहा है ना, और नहीं तो ऐसा हो जाएगा फिर मैं इतना बढ़िया समझा रहा हूँ कठोपनिषद और ये तो सुनता नहीं, सो रहा है ये, है ना। तो आप जो नीचे मत, जो आपकी बात को श्रद्धा देकर सुन रहा है उसको भी देखो, जो श्रद्धा नहीं करके सो रहा है उसको भी देखो, आपका स्वभाव दोनों को देखने का है, हो गया कि नहीं। आप यदि अपने आप को शरीर में अभिमान करके वक्ता मानोगे तो सामने वाला क्या हो जाएगा, श्रोता हो जाएगा। तो जहां पर वक्ता श्रोता भाव आ जाएगा तो वहां पर राग द्वेष तो होगा ही होगा, ये अपना अनुभव है। इसलिए ठीक इसी पर अवलोकन भी करना है, व्यवहार करते समय, खाते समय, पीते समय, व्यापार करते समय, मेरा स्वरूप तो भाई दृष्टा है और बाकी सब क्या है, दृश्य है। इसको यहाँ पर कहा धीर, तो अभ्यास करेंगे तो धीर बनेगा कोई। और उसके बाद बता दिया भजन अवस्था में इंद्रियों को समाहित कर लो, मन को भगवान में लगाओ, निर्विशेष में नहीं लग रहा है सब विशेष में लगाओ, लेकिन मनोराज्य फिर हो जाएगा, नहीं तो गाने में मन चला जाएगा तो क्या करो, अमृतत्व मिच्छन, है ना। तो भजन करने के लिए ही शरीर मिला है, दूसरे के लिए शरीर नहीं मिला है, ऐसी यदि इच्छा हो तो मन ना बाहर जाएगा ना मन जो है गानिंद में जाएगा, मन तो परमात्मा को ही विषय करेगा, क्योंकि मन का स्वभाव ही ऐसा होता है, मन किसी को विषय बनाए बिना, किसी को आलंबन किए बिना रह नहीं सकता है, इसलिए दरवाजा को रोकना पड़ेगा। एक बाहर के दरवाजा को रोक दिया, एक निद्रा के दरवाजा को रोक दिया, तो तीसरा दरवाजा है परमात्मा, है ना। इसलिए तीसरा दरवाजा परमात्मा की ओर ही जाएगा मन, और कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये तो प्रतिबंधक हो गया कि जो बाहर का जो अनात्मा दर्शन है ना, जिधर जो मन दौड़ रहा है तो उसको यदि रोक लेंगे तो आत्मदर्शन तो स्वाभाविक है। इसलिए यहाँ पर स्वभाव को बता रहे हैं द्वितीय श्लोक में, देखो द्वितीय मंत्र में। तो स्वभाव को जो है साधक समझ करके रखना चाहिए। स्वभाव मतलब ऐसा है, जैसे कि ईशावास्य उपनिषद में भगवान भाष्यकर ने कहा है प्रथम मंत्र में, एक दृष्टांत दिया, चंदन का दृष्टांत दिया भगवान शंकराचार्य ने, दृष्टांत दिया जैसे कोई चंदन हो, चंदन के सुगंध से स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, तो रगड़ने पर सुगंधि कहीं से आती नहीं है, लेकिन क्या होगा कि चंदन को आपने कहीं कीचड़ में गाड़ दिया, गिर गया हो तो कीचड़ के संपर्क से उसमें दुर्गंधी आ जाती है भाई, है ना। तो दुर्गंधी स्वाभाविक नहीं है, नैमित्तिक हो गया। तो क्या करना है, को कीचड़ को हटा दो, धो करके रगड़ लो, तो रगड़ लो तो सुगंधी कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो तो स्वाभाविक है ना। ठीक इसी प्रकार बाहर जो मन दौड़ रहा है अनात्म दर्शन, तो अनात्म दर्शन अविद्या से हो रहा है ना, समझ के कारण मन बाहर जा रहा है, इसको यदि रोक देंगे तो आत्मदर्शन स्वाभाविक है। इसलिए दुख आ रहा है किसी निमित्त से है ना, अज्ञान से दुख आ रहा है, उस अज्ञान को हटा देंगे तो सुख कहीं बाहर से नहीं आता है, सुख तो आत्मा का स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं अविद्या के कारण ये बालक जो है अनात्मा का दर्शन करता है, बहुत विलक्षण बात बोल रहे हैं द्वितीय मंत्र में। देखो पराचक्कामान उनयंति बालास, उच्चारण भी करना है अच्छा, पराचकामान उनयंति बालास ते मृत्युर्यन्ति विदतस्य पाशम्, अथ धीरा अमृतत्वं विदित्वा ध्रुवम अध्रुवेषु यह न प्रार्थयन्ते। कह दिया बाला है, बाला है, बालक है, बाल का अर्थ बालक, तो बालक क्या करता है ये सब हम लोग बालक है कि वृद्ध है समझना चाहिए हम पर। तो बालक की स्थिति क्या होती है, ना समझ होती है, वो तो खेलने कूदने में ही लगा रहता है, तो जब पढ़ने का समय आता है पढ़ता नहीं है, माता बहुत समझाती है, पिता बहुत समझाते हैं, समझता नहीं वो, तो खेल कूद में उसका मन ऐसा लगा रहता है। तो एक महात्मा आया जो है साधु के पास, शाम को आ गया, तो भाई महात्मा ने पूछा कि भाई क्यों आ गए तुम शाम के समय, क्योंकि पिताजी मारने वाले थे, क्यों कि मुझे जो है पाठ तैयार करने के लिए दिए थे, पाठ तैयार नहीं किया, और पिताजी बोले थे शाम तक पाठ तैयार नहीं करोगे तो खूब मार खाओगे, इसलिए मैंने सोचा कि आश्रम में जाएंगे तो मार नहीं पड़ेगी, महात्मा मारेंगे तो नहीं। देखो ये बालक की स्थिति है, माता जो है हित की बात बोलती है कि पढ़ना लिखना तुम्हारे भले ही के लिए है, खेलना कूदना एक समय होता है, शाम का समय हो तो एक दो घंटा खेल लिया, बाकी समय तो पढ़ना है, तो पिता समझा रहा है, गुरु समझा रहा है कि पढ़ना लिखना तुम्हारा हित का है, लेकिन बालक कहाँ समझता है, समझता नहीं, मार भी खाता है ना। इसी प्रकार जो हम लोगों की भी तो स्थिति ऐसी है, जैसे माता समझा रही है, पिता समझा रहा है, गुरु समझा रहा है, इसी प्रकार हम लोग भी तो समझा रहे हैं है ना, कि परमात्मा ने उपदेश ही कर रहा है हमेशा, उपनिषद में उपदेश किया, गीता में किया है ना, उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर भागवत में किया है ना, कि रोज ही उपदेश ही हो रहा है, तो हम कहाँ समझ पा रहे हैं बोलो है ना, कि मन के रस में ऐसा लगे हैं कि ना पढ़ना ना लिखना कुछ नहीं है ना। जिस परमात्मा ने हम लोगों को शरीर दिया, जिस परमात्मा ने हमारे प्राण अपन आदि मन बुद्धि इंद्रियों को चला रहा है हाँ, तो सुबह उठते ही उसका स्मरण करना चाहिए भी है ना। जिस माता ने ये शरीर को दिया है ना, मातृदेव भव कहा गया अभी है, माता का पांव छूना ये पहला कर्तव्य होता है, लेकिन ये सब कहाँ कर रहे हैं हम लोग। तो हमारी स्थिति भी क्या है, बालक ही है, कोई अंतर नहीं है, इसलिए भगवान भाष्यकार ने बालक मतलब ये छोटा बालक नहीं, इसलिए बालक का अर्थ लिखते अल्पज्ञ अज्ञानी है ना, जो हित की बातें को ना समझे और समझने पर भी यदि ना करे वो तो और बालक होगी, है ना। समझने पर भी यदि ना करे तो बालक से भी और छोटा बालक हो गया वो। इसलिए बालक का अर्थ कर दिया अल्पज्ञ, अज्ञानी है। इसलिए हित की बात को नहीं समझता है और बाहर दौड़ता रहता है, खेलता है। इसी बात को बताते हैं, देखो, पराचक कामान अनुयंती बाला। बालक वही है जो काम का अर्थ यहां पर भोग, काम का अर्थ भोग लिया है भगवान भाष्यकार ने, रूप रसादी जो है ना विषय, तो ये बाहर का विषय होता है। जहां पर विषय बाहर होगा है ना, उसमें स्वतंत्रता नहीं होती है ना। अंदर का जो पदार्थ होता है, अंदर का जो भोग है, उसमें कोई परतंत्रता नहीं है। बाहर की फोटो में पराधीन है भाई। किसी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए जाओगे तो मंदिर का भगवान कैसा होगा, बाहर होगा कि नहीं, है ना। तो वहां पर तो लाइन लगाना पड़ेगा, और जल्दी दर्शन करना है तो घूस दे करके दर्शन करना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाता है कि नहीं। परमात्मा का दर्शन करना है वहां पर भी घुस देना पड़ता है ना। तो ये कलयुग है तो वहां पर पराधीनता है, लेकिन अंदर जो परमात्मा बैठा है ना बुद्धि में, उसका दर्शन करना हो तो उसको कौन छीनेगा, बोलते वहां पर लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, है ना। ये बोलते हैं कि पराच मतलब बाहर, आत्मा से जो बाहर का पदार्थ हो उसको कहा जाएगा बाहर। तो बाह्य भोग की ओर दौड़ता रहता है ये बालक, वहां पर ये मिलेगा, वहां पर ये मिलेगा। ब्रह्मलोक तो दौड़ता रहता है, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक ब्रह्मलोक हो गया अदृष्ट भोग, और यहाँ का जो भोग है ये दृष्ट भोग हो गया। ये सब के सब बाहर ही है, ये चाहे ब्रह्मलोक हो चाहे स्वर्गलोक, ये सब बाहर ही है। तो बाहर के भोगों में ये बालक जो है दौड़ता रहता है, अनुयंतल पीछे पीछे दौड़ता है। जो पीछे पीछे दौड़े भोग के पीछे पीछे, उसको यहाँ पर कहा जाएगा बालक, उसको बालक कहा जाएगा भी। तो पीछे पीछे दौड़ेगा तो क्या होगा, आनंद मिलेगा कि नहीं, आनंद नहीं मिलने वाला है, है ना। तो आनंद जो है कुछ समय के लिए केवल भासता है, वास्तविक आनंद मिलता नहीं। इसी प्रकार हम लोगों की स्थिति भी, थोड़ा सा हम दान पुण्य कर लिए तो सुख तो मिलता है, है ना, लेकिन जब तक पुण्य है तब तक मिलेगा। लेकिन जब तक बुकिंग किया है तब तक रहोगे ना होटल में, उसके बाद कैसे रहोगे। छीणे पुण्य मरते लोकम विसंति, वहां से फेंक देंगे स्वर्ग से, कहाँ गिरोगे, पाकिस्तान में गिरोगे कि भारतवर्ष में, क्या ठिकाना है। कोई ठिकाना नहीं है कि समुन्द्र में गिरेंगे, है ना। इस ये है बालक की स्थिति बता दिया भाई, कि भोग के पीछे पीछे दौड़ने वाला बालक हो गया तो उनका क्या होगा, है? बोलते हैं देखो, वो तो बंधन में गिरेगा ही गिरेगा, बंधन में जरूर फंसेगा। ये बाह्य बाहर का जो भोग है ये जो फंसाने वाला है। जैसे कि ऐसा समझ लो, जैसे पक्षी को पकड़ते हैं ना, पक्षी को पंछी को पकड़ते हैं जो है बहरिया लोग पकड़ते हैं, पहले तो जाल फैला देगा, जाल फैला देगा, और जाल में जो है छोटे छोटे दाने जो होते हैं, रोटी के टुकड़े अनाज के टुकड़े फेंक देता है भी। तो अनाज के टुकड़े जो फेंकता है काहे के लिए, ये पंछी को खिलाने के लिए थोड़ी है वो, है ना, ये पंछी को फंसाने के लिए हो गए कि नहीं। इसी प्रकार ये हाँ, ये माया ने जो क्या किया ना, माया रूपी बहरिया है ना, ये बहरिया यहाँ पर माया समझ लो। परमात्मा की जो माया है, ये संसार रूपी जाल में ये भोग रूपी दाना को छोड़ रखी है, ये काहे के लिए, फंसाने के लिए, है ना। इसलिए महात्मा लोग सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं कि क्या हो गया कि नारद जी होते हैं ना, नारद जी संत है, संत का स्वभाव कैसा रहता है, नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना कहा गया। तो एकदम जो है मक्खन, नया मक्खन की तरह एकदम जो है कोमल होता है। और नारा जी तो भ्रमण करते रहते हैं और लोगों से पूछते रहते हैं, जैसे आप लोग बुलाएंगे ना घर में तो पूछते कि नहीं, है ना, संत पूछते हैं भाई साहब ठीक ठाक है ना। पहले तो एक दो बार सब ठीक है बोलेंगे, है ना, फिर आपकी बहू है ना जो अभी भी विवाह हो कैसी है, तो उससे जब नहीं मिलता है ना फिर देखो, फिर सारा दुख जो है प्रकट कर देती है। तो इसी प्रकार संत का स्वभाव ही है। तो नाराजी संत हैं वो तो भ्रमण करते रहते हैं और लोगों से पूछते रहते हैं क्या दुख है क्या दुख है। तो एक बार जो सर्पों ने कहा, सर्प होते ना, तो सर्पों ने कहा कि महाराज हमको बहुत दुख है। भाई क्या दुख है? भाई बात ऐसी है कि रात में तो हम लोगों को कुछ दिखता नहीं है, रात में तो हम आहार नहीं ढूंढ सकते, और दिन में जब निकलते हैं तो ये मनुष्य लोग मार देते हैं हम लोगों को पत्थर से डंडा से, नहीं तो सपेरा जो है पकड़ कर ले जाता है। तो ये हमारी स्थिति है, रात में दिखता नहीं और दिन में हम निकल नहीं सकते, तो हम जो है अपने लिए आहार कैसे ढूंढेंगे। तो नाराज जी को दया आ गई, बात तो सही है। वो चले गए कहां, विष्णु लोग में, और गरुड़ जी है भगवान के बहान है, तो उनसे कहा क्या तुम गरुड़ यहां पर मजे में हो, तुमको तो वे जाति भाई की चिंता ही नहीं है। ये देखो जाति का नाम ले लोगे ना तो आदमी को जो आवेश आ जाता है, व्यवहार में भी हम देखते हैं जाति को बोल दो, नहीं तो भाषा को बोल दो तुम्हारी भाषा ठीक नहीं, नहीं तो जो है राज्य बोल दो तुम्हारा ये देश राज्य ठीक नहीं, नहीं तो धर्म बोल दो, धर्म जाति भाषा राज्य है ना, इसमें जो बड़ा अभिमान होता है ना, इसलिए साधु को बोला जाता है इसको तुम पहले छोड़ो। हो गए कि नहीं? जो जो प्रतिबंध डाल रहा है ना इसको तुम पहले छोड़ दो, ये अपनी मातृभाषा को छोड़ो है ना, और अपने राज्य को छोड़ो, ये जो वर्ण वगैरह सब जितने ही प्रतिबंध हो गए ना सब इसको, इसलिए कोई के भक्त भी होते हैं स्वामी जी आप कहाँ के हैं, अरे भी सब छोड़ दिया तो कहाँ के पूछने की आवश्यकता पूछना भी नहीं चाहिए, और अनजान से पूछ भी लिया तो उत्तर भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो राग द्वेष हो जाएगा ना। अरे भाई राग द्वेष को छोड़ने के लिए तो सब छोड़ा है, फिर राग द्वेष में पड़ेगा तो काहे को फिर साधु हुआ, है ना। तो भाई जो आवेश आ गया, जाति का नाम बोल दिया तो आवेश आ गया गरुड़ जी को, तुमको तो कोई चिंता ही नहीं है जाति भेद में क्या हो रहा है। तो आवेश हो गया तो क्या हुआ बताओ, कौन कोट दे रहा है? तो उन्हें समझाया कि बात ऐसी ऐसी है, उन लोगों को आहार नहीं मिल पा रहा है, तो कौन दे रहा है ऐसा कष्ट? तो मनुष्य दे रहा है। तो गरुड़ जी को आवेश हुआ कि मैं आक्रमण करूं क्या मनुष्य के ऊपर? नारद जी ने कहा ये सब करने की, मारने पीटने की कोई जरूरत नहीं है भाई, तुम जो भगवान के पास रहते हो और भगवान तो समर्थ है, अब भगवान से प्रार्थना तो कर सकते हो ना। और नारद जी ऐसे कि उनकी बात सबको जंच जाती है, सबको जसती है ना, चाहे मनुष्य हो देवता हो है ना, सबको उनकी बात जंचती है। तो बात जंच गई और भगवान बड़े प्रसन्न में थे और भगवान से प्रार्थना किया कि बात ऐसी ऐसी है। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं एक झोला दे रहा हूं झोला, और उस झोले में मणि है, मणि 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 है भी, और उस मणि में एक छिद्र है, छिद्र उस छिद्र में एक एक बूंद जो है अमृत है, और मणि को बांट दो, मणि को बांट दो और मणि में जो अमृत है ना उसको पान कर ले, भाई पान कर ले तो भूख प्यास नहीं लगेगी, यदि बाहर जा रहे हैं तो काहे के लिए जा रहे हैं, भूख लगती है, भूख लगती है इसलिए आ रहे, भूख प्याज ना लगे तो भोजन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो भोजन की आवश्यकता नहीं तो बाहर नहीं जाएंगे, मनुष्य नहीं मरेगा। तो गरुड़ भी प्रसन्न हो गया और मणि बढ़ गई, है ना, ये दृष्टांत ठीक से समझना। तो मणि बढ़ गई है, सर्पों ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, है ना, धारण तो कर लिया, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करेंगे भाई? दिन में प्रयोग करेंगे तो मनुष्य ऐसे है कि हमको मार देगा, मणि को भी ले जाएगा, इसलिए रात में हम निकालेंगे, है ना, रात में निकालेंगे। तो रात का समय हुआ और निकाले मणि और प्रकाश हो गया, प्रकाश तो होगा ना, तो फिर जो है उसमें पता लगा ही रहे हैं कि छिद्र कहां पर है, है ना, अमृत पान करने के लिए। तो उसमें क्या क्या पतंगे आ गए, पतंगे छोटे छोटे जो कीट उड़ते हैं ना, है ना, और उसको खाने में रह गए, वो पतंग को खाने में लग गए और भूल ही गए कि इसमें एक अमृत है वो, है ना, और ये भी उनको भ्रांति हो गई, शायद भगवान ने इसलिए दिया है कि पतंगों को खाने के लिए। इसमें एक बिंद है, एक बूंद अमृत है, इसको भूल गए भी, है ना। वो मणि कौन सी है, वो मणि कौन सी है, एक वो मणि है बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है ना, है ना, ये हो गई मणि, है ना, और उसमें बूंद अमृत कौन है, परमात्मा है, है ना। लेकिन हम लोगों ने जो है बुद्धि का प्रयोग, बुद्धि का प्रयोग तो परमात्मा जो आनंद रूप जो अमृत है ना, उसका पान करना चाहिए, है, लेकिन हम उसको भूल गए और हम लोगों को भ्रांति हो गई कि बुद्धि का प्रयोग कहाँ पर करना है, बाहर करना है। तो पतंग कौन हो गई, छोटे छोटे कीड़े जो है ना, कीड़े मकोड़े कौन हो गए, ये बढ़िया बढ़िया रूप, बढ़िया बढ़िया रस जो है ना, ये हो गए पतंगे, इसको भोग करने के लिए ही बुद्धि को लगा दिया, परमात्मा का भजन करने के लिए, परमात्मा जो आनंद रूप अमृत रूप है ना, उसका पान करने के लिए हम भूल गए, बुद्धि का प्रयोग बाहर ही लगा दिया, हो गए कि नहीं। ये होगी बालक की स्थिति, तो हम लोग भी सर्प की तरह हो गए। तो ये बात बोलते हैं, देखो ते वो जो बालक है अज्ञानी ना समझ, तो ना समझी जो हो रही है बालक, वो क्या होते हैं कि बोल दिया कि मृत्युर विततस्य पाशम यन्ति, ये क्या जो मृत्यु है ना, मृत्यु, मृत्यु के कई अर्थ होते हैं, एक तो कह दिया प्रमादो वै मृत्यु हो अहम ब्रवीमि सना सुजाती हमने, तो जो करना चाहिए उसको नहीं करते हैं, जो हमारा कर्तव्य है उसको ना करने का नाम क्या हो गया, मृत्यु। कि कहीं भी जाओ प्रमाद छोड़ता है, है ना। और दूसरा अर्थ ही भगवान भाष्यकार ने किया है, मृत्यु का अर्थ यही है, अविद्या काम कर्म समुदाय से मृत्यु हो, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने ऐसा अर्थ किया, ये जो अविद्या काम कर्म हो रहा है ना, ये हो गई मृत्यु, समझ रहे, बड़ा विलक्षण अर्थ किया है कि अविद्या के कारण कामना करता है, बाहर कामना करता है, अरे अविद्या न हो तो काहे के लिए कामना करेगा, अज्ञान के कारण कामना करता है, वो चाहिए ये रोता रहता है ना, कामना की पूर्ति हो गई थोड़ी सी तो बालक प्रसन्न हो जाता है, और कामना में बाधा हो गई तो रोता रहता है, इस पर हम लोग भी क्या रोते रहते हैं, कामना पूरी हुई तो भोग हो जाता है थोड़ा सा, फिर भोग क्या करेगा, संस्कार को पैदा करेगा, और कामना में बाधा आ गई क्रोध आ जाता है, कामात क्रोध हो भी जाते, कामना से ही क्रोध होता है। तो कामना जब होती है फिर कर्म करेगा भाई, और कर्म भी दो प्रकार के, एक शास्त्रीय हो गया चाहे अशास्त्रीय हो, तो अविद्या काम कर्म क्या है, मृत्यु, ये फैला है, फैला है पूरे संसार में ही फैला है, और उसका जाल कौन सा है, पास मतलब जाल, इसलिए पास का अर्थ किया है पाश्यन्ते बध्यन्ते इति पाश, जिसके द्वारा ये जीव जो है ना, जीव रूपी पक्षी फंस जाता है, बन जाता है, वो हो गया पास। बंधन क्या है तो भगवान भाष्य का लिखते हैं, देखो देह इंद्रियादि संयोग वियोग लक्षण पाश। ये जो देह मन बुद्धि इंद्रियां जो है ना, इसका संयोग होना और इसका वियोग होना, इसको कहते हैं पास। समझ में ना, इंजन का फिट होना बॉगी के साथ, अरे केवल इंजन हो तो काम नहीं होता है, और केवल बड़ी हो तो भी काम नहीं होता है, गाड़ी की बड़ी तो दोनों चाहिए कि नहीं। इसी प्रकार हमारी इंद्रियां जो है ना, मन बुद्धि इंद्रियां हो गई इंजन, है ना, मतलब सूक्ष्म शरीर समझ लो, और ये स्थूल शरीर हो गया बड़ी, गाड़ी की बड़ी हो गई, इसका संबंध हो जाना है ना, ये हो गया पास। जब तक भोग होगा तब तक संबंध बना रहेगा, है ना, जब तक कर्म भोग देने वाला है तब तक सूक्ष्म शरीर का संबंध बना रहेगा स्थूल शरीर के साथ, हो गया ना भाई। और इस शरीर से जो भोग देने वाला कर्म वो समाप्त हो जाएगा तो छूट जाएगा ये, इसलिए कितना कर्म है और कितना फल देना है ये कौन जानेगा भाई, जानने वाला कौन होगा, परमात्मा। देखो परमात्मा प्रत्यक्ष है, शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, देखो ऐसा जानने वाला जरूर कोई परमात्मा है, कि कितना कर्म है और कितना देना है, कब तक देना है, जानने वाला तो परमात्मा है, तो परमात्मा देने का तो इसका वियोग हो जाएगा, इंजन का वियोग हो जाएगा। तो इंजन का संबंध होना, इंजन का वियोग होना, ये क्या हो गया पास, बंधन है, ये है बालक की स्थिति। इसलिए हट करके परमात्मा का भजन करे, ये इसका तात्पर्य हो गया। आगे के विचार कल करते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।